Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Surya Roshni Limited Q1 FY27 earnings conference call. Before we begin, a brief disclaimer. This conference call may contain forward-looking statements about the company, which are based on beliefs, opinions, and expectations of the company as of the date of this call. These statements are not the guarantees of future performance and may involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions at the end of today's presentation. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touch-tone phone. Please note that this conference is being recorded. I would now like to hand the conference over to Mr. Raju Bista, Managing Director, for his opening remarks. Thank you, and over to you, sir.
Yeah, good evening, everyone. I am Raju Bista, Managing Director, Surya Roshni Limited. On behalf of Surya Roshni Limited, I extend a very warm welcome once again to everyone for joining us today. On this call, we are joined by Mr. B.B. Singhal, CFO and Company Secretary, Mr. Gaurav Jain, CEO, Steel Division, Mr. Vasumitra Pandey, CEO, Lighting and Consumer Durable, Mr. Naresh Singhal, Executive Director, Steel, and SGA, our Investor Relations Advisor. I hope everyone had an opportunity to go through the financial results, which were published just almost 1 hour before. Now, moving on to the overall financial performance highlights. In Q1 FY27, our consolidated revenue stood at 2,046 crore, up by 28% year-on-year. EBITDA for the quarter at 120 crore. PAT for the quarter stood at 60 crore, up by 77% year-on-year. We remain a zero-debt company with a net cash surplus of about 155 crore as of June 30, 2026. Coming to the lighting and consumer durable. The lighting and consumer durable segment delivered its strongest ever first quarter with revenues of 456 crore, at about growth of 15% year-on-year. Growth was broad-based, led by LED bulb, baton, downlighter, alongside continued momentum in appliances and professional lighting. EBITDA for the quarter stood at 36 crore, which is up by 17% year-on-year, with margins improving to 7.9% in Q1 FY26. Even as we pass on an input cost increase of approximately about 7% during the quarter, with minimal impact on profitability. Professional lighting ended the quarter with an order book of approximately 150 crore, providing healthy near-term execution visibility. In wire and cables, we achieved close to our FY26 sales volume within Q1 of FY27 itself, supported by our direct benefit transfer electrician loyalty program, where enrollment have gone up to 36,000 as of today. Our FY26 revenue target for the wire business remained 250 crore, on track with our three-year guidance of 500 crore rupees. We remain fully on track to deliver our FY27 guidance of about 22%-23% value growth and about 25% of volume growth in lighting. With the festive seasons now underway, we expect the next three quarters to be more strongly supported by deeper distribution penetration and continued investment in brand building. Now, moving on to the steel pipe and strip segment. The steel pipe segment delivered a strongest start to the year Revenues for the quarter stood at ₹1,590 crore, which is up by 32% year-on-year, with volume growth of around 21% year-on-year to 2.28 lakh tons, achieving its ever highest sale in quarter one. The growth was base led by section pipe, ERW API pipe, supported by a sharp rise in export volumes, following the opening of our US market, spiral cold rolling and GP pipe, even as galvanized pipes remain soft due to continued delay in government fund releases. EBITDA for the quarter stood at about 84 crore, up 63% year-on-year, with EBITDA per ton to 4,006 rupees against 2,922 rupees in Q1 of FY26. The capacity utilization stood approximately 82%. Value-added product contribute 47% of overall volume, and export accounted for 20% of segment volumes. Our order book across trade, export, API and spiral pipe stood at 800 crore, including 78,000 ton of export API orders for the US market. Looking ahead, our strategy for the business rests on three pillars: capacity expansion and depending our value-added product mix and structural cost reduction. Three new DFT mills are being commissioned across Gujarat, Malanpur and Bahadurgarh plant between August and December 2026. And we will continue to add 2 to 3 lakh ton of capacity every year, targeting overall capacity of about 16 lakh ton in FY26 and approximately 2 million ton of capacity by FY28-29. On cost, our various automation, energy efficiency and replacing old plants initiatives are directed at a per ton cost reduction of about 1,100 rupees, and we are fully committed that in full year of FY27 guidance of 4,600 to 4,700 per ton EBITDA will be achieved. We remain confident that our current global supply chain present a structural long-term opportunity for efficient Indian manufacturers with integrated capabilities, and Surya is exceptionally doing well positioned to capture that upside across both our businesses. Now, I would like to request Mr. B.B. Singhal to share his views.
Thank you, respected MD sir, and a very good afternoon to all the participants here on the call. For the quarter, the revenue was 2,046 crore as compared to 1,605 crore, a growth of 28% year-on-year basis. EBITDA and PAT stood at rupees 128 crore and 60 crore as compared to 83 crore and 34 crore in Q1 FY26, a growth of 46% and 77% year-on-year basis respectively. In lighting and consumer durables, revenue for the quarter stood at rupees 456 crore as against rupees 397 crore, a growth of 50% year-on-year basis. EBITDA and PBT stood at rupees 36 crore and rupees 24 crore as compared to 31 crore and rupees 21 crore in Q1 FY26, a growth of 17% and 12% respectively. In the steel pipe and strip, during the quarter, the revenue was 1,590 crore as compared to 1,207 crore, a growth of 32% year-on-year basis. Similarly, EBITDA per metric ton stood at rupees 4,006 compared to 2,922 in the same period last year, a growth of 37% Y-on-Y basis. EBITDA and PBT stood at rupees 84 crore and rupees 57 crore as against 52 crore and rupees 24 crore, a growth of 63% and 134% respectively. In Q1 FY27, our net working capital cycle was 72 days with a return on capital employed of 12.69% and a return of equity of 8.95%. Improved capacity utilization, working capital optimization and cost rationalization enabled us to become a zero debt company and having cash surplus fund of 154 crore as on June 30, 26. With this, I conclude the presentation and we can now open the floor for further questions and answers.
Thank you very much, sir. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. We have our first question from the line of Viraj Mehta from Enigma Investment Partners. Please go ahead.
Yeah, hello, sir. Congratulations, Rajuji, for
your
performance. Sir, mera pehla question tha ki you said we will do 47 to 4800 rupees of EBITDA per ton. But if I look at the first quarter, apna 4000 rupees EBITDA per ton hua hai. तो 47-4800 करने के लिए बाकी तीन क्वार्टर में तो अपने को 5000 के ऊपर एबिटा पर टन करने पड़ेंगे तो मतलब कैसे होएगा वो
ठीक है नहीं दो चीज मैं आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा एक तो वॉल्यूम को लेकर के और थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के जैसा मैंने लास्ट कॉन कॉल में बात हुई थी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 265000 टन जो है Q1 में expected है, but somehow 2.3 lakh ton के आसपास हुआ है, थोड़ा उसमें shortfall हुआ है, दो-तीन कारणों से, एक तो हमारा कुछ vessels के availability के कारण करीब 7000 ton के आसपास material जो है port में ही पड़ा रहा, और दूसरा थोड़ा middle east में जो कुछ भी extended ये चल रहा है, उसकी वजह से थोड़े middle east side के order कम रहे 8-10,000 टन का और थोड़ा एपीए और स्पाइरल में करीब 8-10,000 टन का शॉर्टफॉल था जो एक्सपेक्टेड था क्वार्टर वन में होगा उसके कारण थोड़ा वॉल्यूम में कम है अदरवाइज भी मतलब ग्रोथ जो है ठीक ठाक रही है और जो नंबर हमने 11 लाख टन का बताया था वो बाकी के तीन क्वार्टर में हम उसको पूरा कर लेंगे क्वार्टर 2, 3 और 4 तीनों जो क्वार्टर मिला करके करीब 22-23% के आसपास का जो ग्रोथ नंबर था वो हम उसको अचीव कर लेंगे जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी बिटा का विषय था उसमें भी दो तीन रीजंस मैं आप सबको जरूर बताना चाहूंगा कि बिटा जो है 4700 रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड था इसमें करीब 700 रुपए टन के आसपास का थोड़ा इम्पेक्ट आया है मेनली दो बड़े रीजंस है और बहुत ही जेन्युइन रीजन से एक तो ओशन फ्रेट के अंदर में लगभग 3800 रुपए पर टन का इम्पेक्ट आया इस क्वार्टर में और हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट करीब करीब 20% से ऊपर रहा है इस क्वार्टर में और टोटल वॉल्यूम से अगर मैं उसको डिवाइड करूं तो करीब 800 रुपए पर टन का इम्पेक्ट जो है इबिटा में ओनली बिकॉज ऑफ ओशन फ्रेट उसका इम्पेक्ट आया है सिमिलरली कुछ इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई है मेनली उस कोटिंग मटेरियल में गैस और ओआरएम के अंदर में उसका भी लगभग करीब करीब जो है 200 रुपए पर टन के आसपास का है बट साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये ओशन फ्रेट का इम्पेक्ट इस क्वार्टर में पार्टिकुलरली ज्यादा था मेनली हमारे पास जो पहले पुराने ऑर्डर बुकिंग था उसकी वजह से अब ऑलमोस्ट जितने भी ऑर्डर अभी हाथ में है या जो आ रहे हैं तो नए बड़े हुए फ्रेट में ही हम बुकिंग को ले रहे हैं तो उसकी वजह से करीब करीब आप मान लीजिए कि 1000 रुपए के आसपास का और नहीं तो भी 600-700 रुपए का इम्पेक्ट इबिटा में वो साफ दिखता है जिसको आने वाले समय में तो पूरा करेंगे। और जो मेनली आपका जो कंसर्न था कि पूरे साल भर में हम, तो साल भर में 4600 से 4700 रुपए का हमने बताया था पहले, तो करीब 4400 के आसपास, 4400-4500 के आसपास जो है हम सेकंड क्वार्टर में करेंगे, और थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर मिला करके 4600 to 4700 का EBITDA पर टन जो है मतलब पूरे साल का रहेगा। और जितना प्रॉफिटेबिलिटी हमने लाइटिंग और स्टील का मिला करके आपको हमने लास्ट कॉल में कहा था, उसको हम अचीव कर लेंगे, वी आर फुल्ली कॉन्फिडेंट।
श्योर सर, अब थैंक यू सो मच, आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। सर सेकंड क्वेश्चन रिगार्डिंग कि अपना मई और जून में काफी, अप्रैल मई और जून में स्टील के काफी प्राइसेस करेक्ट हुए, तो कितना इन्वेंटरी लॉस हुआ होगा अपना इस क्वार्टर रफली?
नहीं मतलब अप्रैल में, पार्टिकुलरली अप्रैल 26 के अंदर में 3,000 से 4,000 रुपए का प्राइस इंक्रीज था, मई जून में मतलब प्राइस डिक्रीज हुआ है, तो ओवरऑल पूरे क्वार्टर में मतलब एक पार सही है, उसका कोई मतलब इम्पैक्ट ऐसा मतलब Q1 के अंदर में नहीं है। मोरलेस अभी जहा करके मुझे ऐसा लगता है स्टेबल सा है स्टील प्राइस, 1,000 रुपया अप एंड डाउन इसी लेवल पे चल रहा है। एंड क्वार्टर टू में थोड़ा हमको एक बेनिफिट भी होगा, करीब 25,000 टन का जो है वेसल्स ऑलरेडी जो है पोर्ट में आ गए हैं, और इस क्वार्टर में और अगले क्वार्टर में उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा, क्योंकि वो जो इम्पोर्टेड मटेरियल आ रहा है उसमें काफी प्राइस रीजनेबली ठीक ठाक है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक।
राइट सर, श्योर सर, आई डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस, आई विल कम बैक इन द क्यू।
थैंक यू। We have our next question from the line of Kiran from Table Tree Capital. Please go ahead.
Sir, thank you for the opportunity. Sir, couple of questions. Sir, हमने जो so first thing on order book within the steel strip segment. So we had an order book of in March or the March ending 1,000 crore given in the presentation. Now in this quarter we are saying in spite of all these increase in exports and everything else, our order book is 800 crore. So there's an order book decrease of 200 crore. I mean, should I assume that this 800 crore has a higher proportion of exports, higher proportion of exports, and therefore we continue to do better margins? Because order book itna, matlab 20% gir gaya sir, isliye thoda puchna tha mujhe.
Nahin, wo isko aap tarah se dekh sakte hain, thoda sa क्योंकि जो पहले ऑर्डर बुक था वो तो निकल गया, अब जो फ्रेश ऑर्डर बुक है इसके अंदर में बढ़े हुए फ्रेट में आप देखें ना, एक्सपोर्ट के अंदर में 2,800 रुपया पर टन का इम्पैक्ट आता है, तो एक बहुत अच्छा खासा जो है इंक्रीज है प्रोडक्ट में। और सिमिलरली थोड़ा मिडल ईस्ट के कारण, कुछ मिडल ईस्ट में रेगुलर बेसिस पे हम लोग करीब जो है 15,000 से 20,000 टन क्वार्टरली करते थे, तो वो ऑलमोस्ट 130 मटेरियल जा पा रहा है अभी। और एपीआई के भी ऑर्डर जिस फ्लो में रहने चाहिए थे वो नहीं है, उसमें भी ऑलमोस्ट जो है 50% की डीग्रोथ है। ये तीन रीजन से है, बट एक नंबर स्लाइसिंग स्टील मिला के 1,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और हमारे बिजनेस के अंदर में 800-1,200 करोड़ का ही रेगुलर बेसिस पे रहता है, और मोरलेस हमारे ये सारे जो है बिजनेसेस बड़े फिक्स है, मतलब प्रोजेक्ट के कारण कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज मोरलेस आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ जो डोमेस्टिक जो ट्रेड कंज्यूमर बिजनेस है उसके थ्रू करीब 53% के आसपास की हमारी सेल रहती है, और 20% के आसपास का जो है एक्सपोर्ट हमारा कंट्रीब्यूट करता है। कोल्ड रोलिंग सेगमेंट छोटा है तो उसमें करीब 10% के आसपास रहता है, और गवर्नमेंट और एक्चुअल यूजर का जो है वो करीब 15% का कंट्रीब्यूशन रहता है। सो मोरलेस मतलब ऑलमोस्ट 75-80% हमारा बिजनेस फिक्स जैसा ही, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेगमेंट टाइप में ही रहता है, तो एक पॉजिटिव हमारे बिजनेस साइकिल में ये भी है। सो इसका बहुत बहुत ज्यादा इसका इम्पेक्ट आपको नहीं आएगा, मतलब 20% भले ही 8,000 की जगह 800 दिखता हो, और ये इमीडिएटली 1200 भी हो जाएगा, उसका बहुत ज्यादा ऐसा मतलब क्वार्टर के वॉल्यूम में इम्पैक्ट नहीं आएगा।
समझा सर। मेरा दूसरा प्रश्न है कि सॉरी सर मेरा हिंदी थोड़ा खराब है तो प्लीज एक्सक्यूज, बट मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस से मिडल ईस्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये ज्यादातर जीआई पाइप है या एपीएन स्पाइरल पाइप है? द रीजन आई एम आस्किंग सर इज बिकॉज एपीएन स्पाइरल पाइप जो हमारा हाईएस्ट एबिटडा पर टन था वो काफी गिर गया FY26 में, तो इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा ज्यादातर एक्सपोर्ट जो हम लोग यूएस को बोल रहे हैं 78,000 टन एंड एवरीथिंग, इज इट जीआई पाइप और एपीएन स्पाइरल पाइप?
नहीं, ये ईआरडब्ल्यू एपीआई पाइप है, ये एक नया मार्केट हमारे मतलब उसमें किटी में एड हुआ है और इसके अंदर में भी एबिटा पर टन अच्छा है, मतलब इस क्वार्टर में करीब 70-100 ही था, मेनली ऑन अकाउंट ऑफ फ्रेट वेसल्स की वजह से, और बट लॉन्ग टर्म के लिए जो है ब्रेक बल का जो है मतलब टाइप भी हो गया है पार्टिकुलरली फॉर द यूएस मार्केट जहां एक साथ ही बड़ी वॉल्यूम मतलब जाती है। सो आने वाले क्वार्टर में इसमें इटा में और इम्प्रूवमेंट आएगा और जो है ब्रेक बल की होने की वजह से जो है वेसल्स में जो इंक्रीज का इम्पेक्ट है वो भी थोड़ा कम रहेगा। सो ये मेनली जो जा रहा है यूएस मार्केट को वो एपीआई ईआरडब्ल्यू पाइप है, नॉट स्पाइरल।
नॉट गॉट इट सर। लास्ट क्वेश्चन मेरा इन टर्म्स ऑफ ये जो यूएस अपॉर्चुनिटी है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है जो नया प्रोडक्ट के वजह से खुला है, एंड प्रीवियसली ऑल्सो यूज टू एक्सपोर्ट लिटिल बट नाउ तो इट्स अ कम्प्लीटली न्यू प्रोडक्ट लाइक यू जस्ट सेड ईआरडब्ल्यू एपीआई। सो हम लोग FY27 में यूएस फोकस्ड रेवेन्यू या जस्ट जनरल एक्सपोर्ट रेवेन्यू कितना कर सकते हैं सर, एंड FY28 कितना कैसे ग्रोथ देख रहे हो आप स्पेशली इन द एपीआई बिजनेस बिकॉज एबिटा पर टन इज मच हायर, सो इट बी वेरी गुड टू पेंट अ पिक्चर फॉर अस टू से एक्सपोर्ट्स में इतना सब ग्रोथ आ रहा है एंड ऑल दिस एक्सपोर्ट ग्रोथ विल कम एट अ हायर एबिटा पर टन।
सी दो तीन चीजें जैसे मैंने पहले भी बताया कि पूरे साल में जैसे 11 लाख टन का जो हमारा वॉल्यूम है अभी 2.3 लाख टन हुआ है, तो क्वार्टर टू में 2.6 लाख टन के आसपास करेंगे, Q3 में 2.8-2.9 लाख टन और Q4 में 3.2 के आसपास करेंगे, तो 11 लाख टन वॉल्यूम में हमें कोई ऐसे इश्यूज नहीं दिखता और यूटिलाइजेशन भी ऑलमोस्ट 82% प्लस के आसपास ही चल रहा है सारी पांचों फैक्ट्रियों के अंदर में। सो दैट इज वन। साइमल्टेनियसली मैंने जब शुरू के रिमार्क्स में बताया कि हमारा ज्यादा थ्रस्ट अभी भी इसमें है कि हम ज्यादा मार्जिन्स वाले हाई वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट पे ही हमारा फोकस रहे। सो ग्रेजुअली आप देखेंगे 40-42% से बढ़ते बढ़ते अब वो 47% के आसपास हो गया है और थोड़ा मिडल ईस्ट में करेक्शन होने के बाद और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मार्केट भी ग्रो कर रहा है, कुछ मलेशिया कुछ नए कंट्री भी पाइपलाइन में हो रहे हैं। सो मुझे लगता है यूएस का हमारा करीब करीब जो है 8-10% के आसपास शेयर रहेगा, तो ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन 20% की बजाय बढ़ के 25% हो जाएगा।
अच्छा, तो 20% था FY26 में, अभी 25% होगा, इज दैट राइट
अंडरस्टैंडिंग? FY26 इट वाज अबाउट 15-16%, प्रिसाइजली 17%। नाउ द FY27 it has increased to 20%, so gradually it will go up to like about 25% of total steel segment business. Yeah.
Perfect. Thank you so much. I'll get back
in. Thank you. We have our next question from the line of Love Gupta from Counter Cyclical Investments. Please go ahead.
Last call mein apne bola tha ki abhi new route ke अंदर आप कंसिडर करेंगे बायबैक, तो उस पर कोई अपडेट है?
नहीं, उस पर चल रहा है, होपफुली बहुत जल्दी मतलब उस पर कुछ न कुछ निर्णय हम करेंगे, बट एज सच मेरे पास आज कोई मटेरियल नहीं है डिस्क्लोज करने के लिए, बट उस पर हमारी टीम काम कर रही है, क्योंकि अब उसके अंदर में जो पहले डबल टैक्सेशन वाला एंगल था वो भी ठीक हो गया है सरकार की तरफ से, तो उसके अंदर में जो है हम करेंगे। और थोड़ा इस पार्टिकुलरली कुछ दो तीन क्वार्टर के अंदर में थोड़ा ये महंगाई बढ़ने के कारण या स्टील में उतार चढ़ाव के कारण थोड़ी वर्किंग कैपिटल भी बढ़ी हुई है, उसमें पैसा काफी लगा हुआ है, बट वेरी सून मतलब हम लोग कुछ न कुछ कॉर्पोरेट एक्शन जो भी करेंगे आपको जल्दी बताएंगे।
और सेकंड सर, डीमर्जर पर भी कोई अपडेट है?
सो ये भी वही कॉर्पोरेट एक्शन की बात हो गई, अब देखते हैं बोर्ड किस पे सहमति बनाती है, मतलब बायबैक पे या डीमर्जर पे, बट एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मैं कहता हूँ कि दोनों बिजनेस स्टैन अलोन अच्छा कर रहे हैं, इवन लाइटिंग कंज्यूमर भी और स्टील सेगमेंट भी, सो मुझे लगता है ये अप्रोप्रिएट टाइम है। थोड़ा मतलब माइक्रो तो ठीक ही लगता है, थोड़ा ये मैक्रो सिचुएशन थोड़ा ठीक हो जाए तो मुझे लगता है ये राइट टाइम है, मैं आपके कंसर्न जरूर जो है मैनेजमेंट तक और बोर्ड तक जरूर पहुंचाऊंगा।
थैंक यू सो मच।
थैंक यू। वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लाइन ऑफ प्रणव फ्रॉम रे एंटरप्राइजेस, प्लीज गो अहेड।
हाय सर, थैंक्स अ लॉट फॉर द अपॉर्चुनिटी।
हाय
सर, इन लास्ट क्वार्टर यू हैड सेड दैट यू विल come to a decision by next board meeting on demerger, and and also second thing is what in macro and micro actually is like, because two businesses have completely different cycles, different macro and different micro, so why we take this reason as a reason to delay demerger or buyback, just for my clarity.
नहीं, दो तीन चीजें हैं, एक तो दोनों बिजनेस जैसा मैंने बताया स्टोन एलोन काफी स्ट्रॉन्ग है, और लाइटिंग के अंदर में भी वायर और अप्लायंसेस ये सब ऐड किया है, स्टील पाइप के अंदर में भी कुछ इन्वेस्टमेंट फर्दर हमने किया है, तो मतलब वो एक उसी रास्ते पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और ग्लोबली जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो तो अनसर्टिनिटी है ही, इसमें तो आज कुछ होता है फिर तीन दिन बाद कुछ और होता है, तो ये सब सीन है, ये सबको देखते हुए, और कभी भी जो है ऐसा लगेगा कि ये राइट टाइम है, और मेरा फिर एक ही बात कहना है, हमारे पास डेट तो है नहीं, बैंकों को जो सर्विस जितनी साल तक सेवा करनी चाहिए थी वो कर ली, और एम्प्लॉय को टाइमली 5 तारीख तक तनख्वाह सबको मिल जाती है, तो कंपनी में सब शेयर होल्डर का पैसा है, अब जो कुछ भी कंपनी का धन है वो शेयर होल्डर का ही है और वो उन्हीं पे जाएगा।
करेक्ट सर, सो दैट्स व्हाई बिकॉज व्हेनेवर आई स्टडी दिस कंपनी आई फील दैट रेगुलेटरी वाइज और बैंक वाइज और एनीथिंग देयर इज नो थ्योरेटिकल थिंग स्टॉपिंग डीमर्जर अनलेस एंड अंटिल,
कोई लॉजिक नहीं है डीमर्जर नहीं करना, आई स्ट्रांगली बिलीव।
सर, और एक चीज था कि जैसे आपने बोला कि 7,200 रियलाइजेशन यू ऑल्सो गॉट फॉर दिस क्वार्टर एक्सपोर्ट्स, बट द मोस्ट ऑफ द एबिटा इंक्रीज वेर ईटन अवे बाय टैरिफ इंक्रीज, सो गोइंग फॉरवर्ड यू सी थिंक दैट द टैरिफ्स हैव नॉर्मलाइज्ड और द प्राइसिंग विल टेक केयर ऑफ दिस एबिटा इरोजन दैट हैज हैपेंड, एबिटा पर इरोजन दैट हैज हैपेंड?
नहीं, वो जैसे क्या होता है कि जो ऑर्डर बुक रहता है पहले का वो तो उसी प्राइस में जाता है, अब जो भी नए ऑर्डर हैं, इवन जो ऑर्डर इन हैंड है बुक्ड है वो भी अब नए फ्रेट इंक्लूड करके ही हम ऑर्डर ले रहे हैं, और इसीलिए भी थोड़ा स्लाइटली आप देखेंगे 1,000 की जगह 800 करोड़ का जो है हमारे पास ऑर्डर बुक है, तो वो उसका मतलब ये जैसे 3800 रुपए पर टन एक्सपोर्ट के टोटल वॉल्यूम के अंदर में जो इम्पेक्ट था, खैर डिफरेंट कंट्री एज डिफरेंट टेरिफ, तो उसका इम्पैक्ट जो है आने वाले क्वार्टर में मतलब वो इम्पैक्ट नहीं आएगा, दैट वी हैव ऑलरेडी टेकन केयर ऑफ।
अंडरस्टूड सर। सो लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, यू हैड गाइडेड दैट एक्सपोर्ट वर्सेस 1.26-1.3 लाख टन लास्ट ईयर वुड बी 2.4 और 2.5 लाख टन दिस ईयर, So, and that will help obviously the EBITDA per ton for our company. So does that outlook, volume outlook remain same? So 10,000 ton per month US market that had opened for us. Does this continue?
So overall, as far as US market is concerned, we'll be doing like 120,000 to 125,000 ton of business during this entire FY27.
Right. So total export will be upwards of 2-point-something, 2.2, 2.3.
Yeah. The contribution of US market probably will be around 10-11%. So I think we'll be doing around 300,000 tons of export.
Okay. Thank you, sir. Thank you.
Thank you. We have our next question from the line of Shantanu Basu from Smith Limited. Please go ahead.
Hello.
Yes, Shantanu.
Am I audible? Yes, hi. So, sir, my first question is with regard to the Middle East situation. If you could just explain or give us some clarity with regard to how the Middle East situation is shaping up and how would we see it shaping up during the next few quarters? That is one. And the second question is, when I'm looking at slide 18 of your presentation, I'm seeing that the API and spiral pipes EBITDA per metric ton dropped very significantly in FY25-26 to 5,600 rupees compared to 9,136 in FY22. Then, of course, it went up to 12,000, 10,000. So what was the reason for this sharp drop, and how do you see it, and what is the figure in Q1 FY27, and how do you see the figure to improve in the coming quarters? That's all, sir.
एक तो देखिए जो मिडल ईस्ट का आपने बताया $300 से $4,200 रुपीज हो गया फ्रेट, तो वो तो हमारे हाथ में ही नहीं है. और सिचुएशन जो है वो कैसे आगे इवॉल्व करेगा बहुत प्रिसाइजली कहना भी बहुत मुश्किल है. और ना तो भारत हमारे देश के हाथ में है और वहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है ना किसी के कंट्रोल में है. और दूसरा जो आपने बताया कि ये स्पाइरल के अंदर में, इसमें क्या है कि मतलब कई बार एपीआई स्पाइरल रहता है तो उसमें अच्छे प्राइस मिलते हैं, वाटर प्राइस में थोड़ा कम मिलते हैं, तो वो प्रोडक्ट मिक्स की वजह से जो है उसका इम्पैक्ट इसमें आता है. सो एसच जनरली स्पाइरल के अंदर में जो एपीआई स्पाइरल रहते हैं उसमें मार्जिन हायर साइड पे रहते हैं, और वाटर पाइप का सेगमेंट रहता है तो उसमें थोड़े से कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जाता है.
सर Q1 FY27 में कितना था ये? हेलो,
एक मिनट. Q1 सो इट वॉज 3,420 रुपीज पर टन.
3,420 रुपीज. ओके.
सो इसमें थोड़ा सा जो कोटिंग मटेरियल का इम्पैक्ट इसमें अच्छा खासा है, मतलब इस स्पाइरल में.
ओके सर. और मतलब बाकी तीन क्वार्टर में कैसे देखते हो इस फिगर को?
सो ये मतलब ग्रेजुअली इम्प्रूव करेगा क्योंकि अब नए ऑर्डर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले साल 5,600-5,700 रुपये पर टन के आसपास था. मुझे लगता है 5,000 रुपये तक हम इसको लेके जाएंगे
फॉर द फुल ईयर.
या
ओके, ठीक है.
थैंक यू. वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द लाइन ऑफ रेशम जैन फ्रॉम वीवीडी एसेट मैनेजर्स. प्लीज गो अहेड.
हाय सर, गुड इवनिंग. कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन गुड सेट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ. सर मेरे तीन सवाल हैं. पहला ये है कि जनरली एपीआई पाइप्स इंडिया का जो टेंडर्स वगैरह रहते हैं वो काफी स्लो थे लास्ट एक साल से, बट अभी दिख रहा है कि काफी सारे नए टेंडर्स फ्लोट हो रहे हैं, तो उस पर कुछ आपका व्यू रहेगा फॉर सेकेंड हाफ?
रेस्ट बाकी दो क्वेश्चन आप एक साथ ही पूछ लीजिए।
सर दूसरा ये था कि हमारा जो कैपेसिटी एक्सपांशन हम जो प्लान कर रहे हैं ऑलरेडी हम 16 लाख टन पे है आई थिंक, और आपने बोला 2-3 लाख टन हर साल ऐड करेंगे, और वो कहाँ पे करेंगे, साउथ में, ईस्ट में, जहाँ पे आपका कैपेसिटी थोड़ा कम है क्या हम वहाँ पे करेंगे क्या? और तीसरा सवाल ये है, आपने बताया कि जो पहले गाइड किया था उतना ही इबिट्टा हम करेंगे FY 2027 में, तो आपने लास्ट टाइम 700 करोड़ का इबिट्टा का गाइडेंस दिया था FY 2027 के लिए, तो ये तीन सवाल है सर।
सो पहला तो आपने बताया कि ये जो API टेंडर जो बिजनेस है वो अभी टेंडर आ रहे हैं, यू आर वेरी मच करेक्ट, और उसमें हम पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, बट उसको मेटरलाइज होने में वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। सो दैट इज वन। दूसरा जो जहां तक कैपेसिटी, अभी हम 14 लाख टन हमारी कैपेसिटी है, सो इस साल के एंड तक जो है हमारे ये तीनों फैक्ट्री के अंदर में एक्सपेंशन पूरा हो जाएगा, मिल कमीशन पे आ जाएगी तो 16 लाख टन हो जाएगा, और FY 2028-29 में जाकर के 2 मिलियन होगा ये कैपेसिटी का बारे में। और जहां तक ओवरऑल जो है आपने बीटा की बात की, सो पूरे मतलब जैसे क्वार्टर वन में 120 करोड़ का बीटा हमारा था, सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q2 के अंदर में 150 करोड़ और नंबर्स के आसपास, सो फॉलोड बाय 400 करोड़ का हमारा टारगेट है फॉर द रेस्ट H2, सो ऑलमोस्ट 670-680 के आसपास जो है बिटा पूरे साल का रहेगा, और करीब करीब 9400-9500 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू टर्नओवर रहेगा जी।
ओके सर, खाली ये समझना था कैपेसिटी आपका कहाँ एक्सपांड करेंगे इंक्रीमेंटली?
So, अभी तो मतलब गुजरात में भी किया है और ग्वालियर प्लांट में भी और साउथ में भी, और नेक्स्ट जो हमारी कैपेसिटी है वो हम लोग साउथ में कर रहे हैं, और ऑलरेडी हिंदुपुर के अंदर में 10 एकड़ 10 एकड़ एडिशनल लैंड हमने ऑलरेडी लिया है, और करीब करीब 15,000 टन का एक सेटअप वहाँ पे भी एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहे हैं, और उसकी पहली मिल की कमीशनिंग भी जो है जनवरी 27 में, मतलब आज से 6 महीने बाद पहला काम मिल का मतलब कमीशनिंग हो जाएगी, और टोटल 4 मिल का ये प्लांट रहेगा, और करीब 60 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये जो एडिशनल लेन लिया, बट एडजेसेंट ही है जो अभी हमारी करंट पे 50 है इंदुपुर में, तो उसके बगल में ही है, तो करीब 3 लाख टन की जो है हमारी कैपेसिटी यहाँ इंक्रीज हो जाएगी।
Okay. Thank you, sir. All the best.
Thank you. A reminder to all participants, if you wish to ask any questions, you may press star and one on your touchtone phone. Anyone who wishes to ask a question may press star and one. Next question is from the line of Viraj Mehta from Enigma Investment Partners. Please go ahead.
Yeah. Hello, sir. Sir, my just couple of clarifications. You said 680 crore EBITDA for the full year. That means 150 crore in the second quarter. Is that correct?
Yes.
150-160 crore in the second quarter. Hello?
Yeah, yeah.
Right. And sir, ye jo freight ka apna issue hai export mein, सो आर एनी ऑफ दोज ऑर्डर्स अपने को ये इश्यू हैज दैट कंटिन्यूड इवन इन द सेकेंड क्वार्टर इन टर्म्स ऑफ कि जुलाई तो अभी खत्म हो गया, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि जुलाई में भी मार्जिन हिट है ये फ्रेट के कारण?
नहीं विराज भाई, मतलब जुलाई में बहुत कम है और अगले 2 महीने में बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अब जो कुछ भी फ्रेश ऑर्डर आ रहे हैं वो बढ़े हुए प्राइस पे आ रहे हैं, वी आर टेकिंग ऑल इम्पैक्ट ऑफ ये जो फ्रेट का वेसल्स का जो भी आ रहा है, एंड वी आर फाइंडिंग अदर मेथड ऑल्सो कि जैसे US के लिए ब्रेकवेल इजीली वो पॉसिबल था उसको कर लिया, तो उसमें उसका बहुत नॉमिनल सा इम्पैक्ट है, सो वो थोड़ा टाइम लगा, बट उसका इम्पैक्ट अभी क्वार्टर 2-3 में नहीं आएगा।
Right, sir. Or sir, last two question. One, sir, what is the, because we have had spillover, sir, first quarter से second quarter में भी spillover आया है, because आपने बोला port पे 8-10,000 ton रह गया था. तो sir, Q2 में आपके हिसाब से कितना volume कर लेंगे? July already हो चुका है, so I'm sure there is some rough sense you have.
इसीलिए जो है Q2 का जो है हमने गाइडेंस जो है बढ़ा करके दिया है, उसका इम्पैक्ट Q2 के अंदर में रिफ्लेक्ट करेगा.
नहीं, सो एब्सोल्यूट अमाउंट वो कितना होएगा सर? 2.7, 2.6, 2.7, 2.8 कितना करेंगे सर?
2.6 मिनिमम.
2.6. ओके सर, थैंक यू सो मच.
Thank you. A reminder to all participants, if you wish to ask any question, you may press star and one. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on the touchtone. Next question is from the line of Raj Mehta from Raj Mehta Associates. Go ahead.
Sir, पहले तो मुझे ये चीज पूछनी थी कि last 4 साल से अपना sales growth और जो EPS ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. हमारा कंपनी में हम लोग ने कैपेक्स भी अभी कंप्लीट कर रहे हैं, बट जो कॉम्पिटिटर्स है उनका भी, जैसे आपने जैसे फेस किया था ये क्वार्टर में, ऐसे APL अपोलो ने भी सेम चीज फेस की थी, बट उनका मार्जिन, उन्होंने मार्जिन बढ़ाया भी है इनफैक्ट, और वो मार्केट शेयर अभी भी गेन कर ही रहे हैं. तो आप एक्सपोर्ट में थोड़ा ज्यादा फोकस करके आप थोड़ा मार्केट कैप्चर करने की ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे आपका व्यू जानना था कि डोमेस्टिकली आपका ये मार्जिन प्रेशर जो आपको फेस हो रहा है वो कंपटीशन के साथ साथ आपको भी थोड़ा वॉल्यूम नहीं मिल रहा है, तो आपको भी थोड़ा मार्जिन स्क्वीज करके माल बेचना पड़ रहा है, कि कैसा है सिचुएशन ऑन ग्राउंड पे?
नहीं, थोड़ा सब कंपनी की अपनी अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, और जहां तक मैं अगर पीएस की बात करूं, देखिए हमारी वॉल्यूम के अंदर में करीब 32% की ग्रोथ है, और सॉरी 21% की ग्रोथ है, वैल्यू टर्म्स में जो है 32% की ग्रोथ है. और बाकी जो है मैं पीएस की भी बात करूं, जिस कंपनी का आपने नाम लिया उनका 8% का ग्रोथ है. अगर मैं जिंदल सो की बात करूं 13% है, रत्ना मिनी -16% है. तो अलग अलग है, और ये क्वार्टर टू क्वार्टर डिपेंड भी करता है कि मतलब किस तरह का जो है प्रोडक्ट मिक्स आप करते हो. सो मतलब हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ पे हम काम कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में, जैसे मैंने लास्ट कॉन कॉल में बताया था, ये साल ग्रोथ का साल रहेगा सूर्य रोशनी के केस में. और अभी तक स्टील की हमने बात की, और लाइटिंग के अंदर में भी इतना टफ है ओवरऑल, उसके बावजूद भी हमने क्वार्टर वन के अंदर में 15% की ग्रोथ की है, और ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा. इवन लाइटिंग में भी हम 19 से 20% का जो है वैल्यू टर्म्स में हम लोग ग्रोथ करेंगे, और स्टील के अंदर में भी जो है वॉल्यूम में 22% की ग्रोथ रहेगी, और वैल्यू टर्म्स में 30% से प्लस की ग्रोथ रहेगी.
सर ये तो ग्रोथ आपका इसके वजह से आ रहा है, बिकॉज लास्ट ईयर जब आपका जून क्वार्टर था तब आपको सैप इम्प्लीमेंटेशन या आपका कुछ अकाउंटिंग की वजह से आपको थोड़े एक आध महीने का प्रॉब्लम फेस हुआ था, उसके वजह से आपका बेस इफेक्ट बहुत कम है, उसके वजह से आपको ईयर ऑन ईयर बहुत ग्रोथ दिख रहा है. बट मैं जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करूँ तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर में आपका मार्जिन प्रेशर में है, आपका वॉल्यूम जो है आपका जो सेल्स वैल्यू टर्म्स में है वो भी प्रेशर में है. तो ये एक्सटर्नल रीजंस जो आ रहे हैं वो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट्स के लिए समझ सकते हैं, बट डोमेस्टिक के लिए भी अगर आप स्टील डिवीजन स्पेसिफिकली अगर आप सोच रहे हो कि आगे जाके मुझे इसको डीमर्जर भी करना है, तो अगर आप स्टील डिवीजन में भी देखोगे तो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्पैक्ट भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा है. जब आप कॉम्पिटिटर से कंपेयर करते हो तो आपका ROE ROC भी मिड टीन्स में भी आ रहा है, तो हम एज अ वैल्यू क्रिएटिव कैसे शेयर होल्डर्स को कर पाएंगे, बिकॉज लास्ट 4 साल से अपना स्टैग्नेंट ही हुआ है सर.
देखिए, एक तो जो आपने बताया वॉल्यूम का, जो मतलब पिछले साल का इम्पैक्ट भी उसका पॉजिटिव नोट पे हुआ है, क्योंकि पिछले साल Q1 के अंदर में थोड़ा वॉल्यूम के अंदर में इश्यूज था, ये ERP के कारण आपको बताया भी था हमने, तो उसके बावजूद भी हमारा ये अभी तक का एवर हाइएस्ट Q1 की सेल वॉल्यूम हुई है, नंबर वन। नंबर टू जो है कैपेसिटी एक्सपेंशन का काम ऑलरेडी काफी हो गया है पिछले 1.5 साल के अंदर में, और इस साल के अंत तक और एडिशनल वॉल्यूम आ रहा है, और मतलब इन सब रीजन की वजह से जो है आने वाले समय में वॉल्यूम में आपको वो ग्रोथ दिखेगा, वो निराशा नहीं होगी।
सर दूसरा मेरा ये क्वेश्चन था कि हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं हमारा मिक्स में, तो आपने जैसे बोला 42-43% से 47% पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मिक्स आ रहा है, तो ये जब आप 50% तक भी पहुंचोगे तो सर स्टील प्राइसिंग के जो इम्पैक्ट है, जो फ्लक्चुएशन है, तो वो फ्लक्चुएशन में भी अभी भी 50% अपना आपने जो भी एडिशनली आप जो 3-4% ही इंक्रीज कर रहे हो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो उससे हमारा कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएशन रहेगा ये नंबर्स बेस्ड ऑन दी प्राइसिंग ऑफ दी स्टील, तो हमारा मोटिव क्या है? बिकॉज अगर आप कॉम्पिटिटर्स को भी देखोगे सब लोग यहाँ से शिफ्ट होके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में ज्यादा जा रहे हैं, बिकॉज उनको ये जो फ्लक्चुएशन है वो फ्लक्चुएशन में उनको इन्वेंट्री लॉस गेन का इशू नहीं रखना है, तो ये चीज में हम एडिशनली क्या कर रहे हैं कि हमारा विजन नेक्स्ट 5 साल में ऐसा हो कि हम ये 40-50% जो वैल्यू एडेड है उसको 60-70-80% तक पहुंचाना है।
देखिए हमारा एक सबसे ज्यादा हमको जहाँ इम्पेक्ट आता है ना वो आता है हमारी मैन पावर पर्टन कोस्ट के ऊपर में, उस पर काम कर रहे हैं, और हमारी जो कोस्ट है लगभग जो है 20% से हम रिड्यूस करेंगे अगले 1 साल में, दैट इज वन। और नंबर टू देखिए जहाँ तक स्टील का फ्लक्चुएशन का है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और आज तक 50 साल हमको भी पाइप बेचते हुए हो गए, 50 साल में इसी तरह से ये चला है, तो आगे स्टील प्राइस हमारे कंट्रोल में रहेंगे ये तो मुझे कोई लगता नहीं है, बट इसीलिए हम क्या है हमारा जैसे मैंने आपको सेगमेंट वाइज बताया हमारा वॉल्यूम, सो 75% प्लस 80% के आसपास हमारा बिजनेस फिक्स रहता है, तो कभी घटता है कभी बढ़ता है, मतलब ओवरऑल साल भर में जाके उसका एवरेज में बहुत ज्यादा उसका कोई नेगेटिव खास इम्पेक्ट नहीं आता इन केस ऑफ सूर्य रोशनी। तो हम ये ट्राई करते हैं क्योंकि हम तो 24 घंटे हमारा काम ही है पाइप बेचना, जैसे ऐसे इन्वेस्टर जो है आपका रोल रहता है कि मतलब हम जाते से जाते कहाँ से कमाई कर ले, तो हमारे लिए तो कमाई करने का साधन ही स्टील है, तो 24 घंटे हम यही सोचते हैं, तो मतलब मार्केट जैसा रहता है उस हिसाब से हम अपने आप को मोल्ड भी कर लेते हैं।
ओके सर दूसरा चीज मैं ये पूछ रहा था कि गोइंग फॉरवर्ड आपका जो नेक्स्ट जो कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ है अभी सेम हम लोग जो अभी फ्यूचर आउटलुक में नेक्स्ट 5 साल का अपना विजन क्या है? आप जैसे बोल रहे थे कि करंट ईयर में आप ग्रोथ पे फोकस कर रहे हो और वॉल्यूम ग्रोथ और ये सब आपको ऑन ग्राउंड पे दिख रहा है, तो नेक्स्ट 5 साल का हॉराइजन कैसा है? आपको 10-15% CAGR के हिसाब से आप ग्रो करना चाह रहे हो कि आप उसको एक्सेलरेट करके 20-25% CAGR में ग्रो करोगे ताकि आप मार्केट शेयर गेन कर पाओगे दूसरे कॉम्पिटिटर्स से? और एक और चीज उसमें यह है कि जैसे APL अपोलो है वो उसका जो बेस कमोडिटी स्टील पाइप का जो है वो उसको डी ग्रोथ कर रहा है और वो फोकस कर रहा है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में, तो क्या ये अपने लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है कि हम उधर से भी एक मार्केट शेयर गेन कर सके और हमारा EBITDA का जो स्प्रेड है वो थोड़ा बढ़ा पाए जनरल सेक्शन में भी?
देखिए फोकस हमारा सेक्शन में भी है, इसीलिए अभी जो भी एक्सपेंशन चल रहा है तीनों प्लांट में वो फुल्ली जो है DFT पे है और सेक्शन पे है, नंबर वन। और नंबर टू मतलब अगले 5 साल में 15-18% का CAGR हमको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि कोस्ट भी काफी पुश होगा, तो उसको भी कंट्रोल रखने के लिए सो वो ऑलरेडी उस रोड में पे हम काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है सूर्य रोशनी के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ करने के लिए और उसको हम इनकेश करने के लिए कुछ एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में भी ऑलरेडी हम आगे बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक शायद मतलब वो क्लियरिटी आ जाएगी तो आपको भी हम बताएंगे। थोड़ा हमारा रीजनल प्रेजेंस और मजबूत करने के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं।
सर ये 15-20% CAGR जो आप बोल रहे हो वो लाइटिंग भी।
सॉरी टू इंटरप्ट मिस्टर राज, मे प्लीज रिक्वेस्ट यू टू रीजॉइन विद यू एज देयर आर सेवरल पार्टिसिपेंट वेटिंग फॉर देयर टर्न।
ओके
थैंक यू। Ladies and gentlemen, in order to ensure that the management is able to address questions from all participants in the conference, please limit your questions to only one per participant. Should you have follow-up questions, we request you to rejoin the queue. I repeat, please limit yourself to only one question per participant. Should you have a follow-up question, we request you to rejoin the queue. We have our next question from the line of Saket Kapoor from Kapoor Co. Please go ahead.
जी साहब नमस्कार साहब, सभी विस्तृत जानकारी के लिए सर मैं अपने दोनों ही प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ। एक तो सर जो आप वॉल्यूम एडिशन कर रहे हैं पाइप सेगमेंट में फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 14-16 के लिए, उसमें हमें कैपेक्स कितना करना है, और सर जो आपने एबिटा का एक जो गाइडलाइन बताई है उसमें हमारा लाइटिंग बिजनेस एंड पाइप बिजनेस का क्या मिक्स रहेगा पूरे वित्त वर्ष के हिसाब से भी बता सकते हैं, फर्स्ट क्वार्टर में कितना था?
नहीं, आप जहाँ तक आपने कैपेसिटी का बताया करीब 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है उसमें और इंटरनल एक्रूवल से ही कर रहे हैं, और जो आपने बताया लाइटिंग स्टील का, तो लाइटिंग के अंदर में देखिए पूरे साल भर में हम लोग 2200 करोड़ का टर्नओवर जो मैंने पहले भी कॉन कॉल में बताया था उसी पे हमने अपने नंबर्स को मेंटेन करके रखा है, और 20-22% की ग्रोथ रहेगी। पिछले साल 1809 करोड़ की सेल थी, इस बार 2200 करोड़ की सेल होगी और करीब 200 करोड़ का जो है इपिटा लाइटिंग डिवीजन के अंदर में हम लोग करेंगे। और जहां तक स्टील डिवीजन का है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और कंपनी एज ए होल जो है पूरे साल भर में जो नंबर हमने पहले आपको बताए थे उसी नंबर पे हम अपने आप को स्टिक रखे हुए हैं। करीब 9400 से 9500 करोड़ का जो है टोटल जो है रेवेन्यू रहेगा और 670 से 680 करोड़ के आसपास का इबिटा कंपनी एज ए होल सूर्य रोशनी का रहेगा।
जी सर, सभी जानकारी पे धन्यवाद सर। लाइटिंग बिजनेस में आप कॉन्ट्रैक्ट में,
सॉरी टू इंटरप्ट यू मिस्टर साके, मे प्लीज रिक्वेस्ट यू टू रीजॉइन द क्यू।
हां पूछ रहे हैं, ये पॉइंट बस क्लियर कर दीजिए।
जी बताइए ना
सर, बस ये पूछ रहा था कि लाइटिंग बिजनेस में हमारा कितना परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू होता है और कितना मेन हाउस का एज अ परसेंटेज?
हमारी स्पेशलिटी जिसमें है स्पेशलिटी वो हम खुद ही इनाउंस करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसके अंदर में इनाउंस करके घाटा है, सो ये तो मेक और बाय हम लोग इंटरनली देख करके करीब करीब 20% के आसपास हमारा जो है आउटसोर्स रहता है, 80% हमारा इनहाउस रहता है।
बहुत धन्यवाद।
जो आउटसोर्स भी है उसको भी हम ही कंट्रोल करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल से लेकर के प्रोडक्शन में हमारे ही लाइन पे लोग रहते हैं, और वो ज्यादातर 80% जो भी बाहर से मटेरियल आता है वो भी एक्सक्लूसिव सूर्य रोशनी के लिए ही बनाते हैं। सो बेसिकली दे आर ऑल्सो अवर एक्सटेंडेड प्लांट।
ओके ठीक है, थैंक यू।
थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल टेक दैट एज अ लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। I now hand the conference over to Mr. B.B. Singhal for closing comments. Thank you and over to you, sir.
Thank you everyone for joining us today on this earnings call. We appreciate your interest in Surya Roshni Limited. I sincerely once again thank our MD sir and the CEO for sparing their valuable time and addressing queries raised by participants who attended the call. For any further queries, if any, you can contact SGA, our investor relations and advisor. Thank you. Good evening once again. Thank you.
Thank you. On behalf of Surya Roshni Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.